शान के जाने के बाद आरवी ऊपर कमरे में आई तो उसकी नज़र बेड के कॉर्नर पर रखे उसके दुपट्टे पर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने घबराकर अपने गले को छुआ और खुद से ही बोली, उन्हें लापरवाह कह रही थी और देख अब तूने खुद क्या किया है। उनके सामने यूं ही भागती चली गई, ये तक ध्यान नहीं दिया कि दुपट्टा तो यहीं रह गया था। तू ऐसा कैसे कर गई? क्या सोच रहे होंगे वो कि यूं ही बिना दुपट्टे के उनके सामने घूमे जा रही थी। आखिर हुआ क्या था तुझे? तुझे एक बार भी ध्यान नहीं आया कि तूने दुपट्टा नहीं डाला हुआ है, अब दोबारा उनके सामने कैसे जाएगी? घबराहट और शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल आरवी खुद पर ही खींच उठी और मुंह फुलाए जाकर अंशु के पास लेट गई। तभी उसको शान का आज उसको गले लगाना याद आया और उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कान फैल गई। एक बार फिर वो शान के ख्यालों में गुम हो गई और उसके बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ शान लगभग 1 बजे घर पहुंचा। उसने जैसे ही गेट पर कदम रखा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो समझ गया कि बड़ी माँ जाग रही हैं। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और अर्पिता जी उसके ठीक सामने खड़ी होकर उसको गुस्से से घूरते हुए बोली, कहाँ थे आप? ये कोई वक्त है घर लौटने का? आज तो छुट्टी थी, फिर आप सारे दिन कहाँ थे? कहाँ से लौट रहे हैं आधी रात को? उन्होंने गुस्से में उससे सवाल किया। शान सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे। सच कहेगा तो वो कहीं कुछ गलत ना समझ लें, इसलिए उसने यहाँ भी झूठ का सहारा लेना ही ठीक समझा और बिना किसी भाव के जवाब दिया, कुछ अर्जेंट काम था बड़ी माँ, उसी में वक्त लग गया, टाइम का पता ही नहीं चला। माफ़ कीजिएगा, आपको इतनी रात तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। बेटा इतना भी काम मत किया कीजिए कि अपने शरीर को ही नज़रअंदाज करना पड़े। जाइए, फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। उनकी आवाज़ में फ़िक्र झलक रही थी। शान ने अब थोड़ा सॉफ्टली जवाब दिया, जी बड़ी माँ, आगे से ध्यान रखूँगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ, रात बहुत हो गई है, अब आप आराम कर लीजिए। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आपने डिनर तो वक्त पर किया, चलिए आप भी जाकर आराम कर लीजिए। शान ने हामी भरी और उन्हें गुड नाइट कहकर वहां से चला गया। रूम में पहुंचा तो आज उसको अच्छा लग रहा था, आरवी के आसपास होने का एहसास मन को सुकून दे रहा था। वो नहाने चला गया, नहा कर आया, फिर बेड पर बैठते हुए उसको वो पल याद आने लगे जो आज उसने आरवी के साथ बिताए थे। ज्यादा नज़दीकियां भी नहीं थी उनके बीच, कुछ खास बातें भी नहीं हुई थी, पर वो पल बेहद खास थे उसके लिए। दिल को सुकून और खुशी देने वाले पल थे वो जब दोनों साथ थे। आरवी एक पत्नी होने का हक जता रही थी, उसको डांट रही थी। अगर पहले वाला शान होता तो आरवी की डांट पर गुस्से से भड़क उठता, पर आज वो एकदम शांत बना रहा। आरवी का यूं हक जताना, फिक्र करना उसको अच्छा लग रहा था और अब उसके दिमाग से निया पूरी तरह से निकल चुकी थी। यहाँ शान भी आरवी के बारे में सोचते सोचते ही सोया। निया उस होटल रूम में बेहोश थी और अर्जुन सारी रात उस अंधेरे कमरे में बैठा उन तस्वीरों को घूरे जा रहा था। निया का शान के साथ प्राइवेट रूम में जाना और सारी रात वापस न आना उसके मन में बहुत से सवालों को जन्म दे रहा था, जिनके जवाब शायद उसका दिमाग जानता था पर दिल मानने को तैयार नहीं था। वो सारी रात यूं ही बैठा रहा और इंतजार करता रहा निया के लौटने का। दूसरी तरफ सृष्टि को जाने क्यों पर आज बहुत बेचैनी हो रही थी। वो आधी रात तक बस करवटें बदलती रही पर नींद ना आ सकी। रेहान भी घर नहीं लौटा था जो उसके पास चली जाती तो बेचारी तंग आकर उठकर बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। रेहान उनके आगे के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में व्यस्त था और रश्मि वो तो लाख कोशिश कर रही थी कि रेहान की तरफ से ध्यान हटा ले, पर हर बार उसके जहन में बस उसी का ख्याल आ रहा था, जाने कब उसकी आंख लगी। अगली सुबह जब आरवी उठी उस वक्त उसके लबों पर गजब का नूर और लबों पर गहरी मुस्कान छाई हुई थी। कल रात की बातें अब भी मन में एकदम ताज़ा थीं। शान का यूं बेबाकी से उसके गले लगना, उसे अपनी बाहों में कसना याद आते ही उसकी धड़कनें जोरों से धड़क उठीं, गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। उसने उस पल में खोते हुए खुद से ही कहा, एक मोहिनी है उस पल में जब आप मेरे करीब थे। मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती कि कैसा लग रहा है मुझे। आपसे प्यार होने का एहसास जितना नया है उतना ही खास है। पता है कल मैं आपको बहुत याद कर रही थी। जब से मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, दिल आपसे मिलने के लिए बेताब था। निगाहों को बस आपकी ही तलाश थी। तड़प रहा था वो एक नज़र आपको देखने के लिए। कान आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेकरार थे, पर आपने तो फ़ोन तक नहीं किया था। मैं निराश हो गई कि ये एहसास बस मेरे दिल में है आपके लिए। आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपको तो शायद मेरी याद तक नहीं आती। यही सब सोचते हुए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों पर अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो, बहुत गलत। पर फिर आप आधी रात को अचानक ही यहाँ आ गए। पता है जब आपने कहा कि आप यहाँ अंशु से मिलने नहीं आए हैं और जैसे आप मेरे गले लगे, मन झनकृत हो उठा था मेरा। सारी बेचैनी एक पल में दूर हो गई, मन खुशी से झूम उठा। आप जरूर किसी बात को लेकर बहुत तनाव में थे, वरना आप कभी वो नहीं करते जो आपने कल रात किया। आपने मुझे वजह नहीं बताई
पर आप परेशान होने पर मेरे पास आए, इस बात ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं आपकी जिंदगी में मायने रखती हूँ। अपनी खुशी में तो हम सभी को शामिल करते हो, पर गम और परेशानी का हिस्सा सिर्फ उन्हें बनाते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं। शायद मैं भी अब आपके दिल में खास जगह रखती हूँ। अब मैं इंतजार करूंगी उस पल का जब मैं भी आपके दिल में वही जगह बना लूंगी जो जगह आपने बनाई है मेरे दिल में, और मुझे खुद पर और अपने प्यार पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मैं आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा लूंगी। आरवी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास का नूर और आंखों में शान के बेइंतहा मोहब्बत छलक रही थी इस वक्त। लबों पर मोहिनी मुस्कान छाई हुई थी। उसने अंशु को ठीक से सुलाया, फिर प्यार से उसके माथे को चूमकर बाथरूम में चली गई। रात देर से सोने की वजह से आज उसको उठने में थोड़ी देर हो गई थी। कुछ देर बाद वो किचन में पहुंची तो अनुपमा जी पहले से वहां मौजूद थीं। उन्हें वहां देखते ही आरवी की मुस्कान गायब हो गई। वो तेज कदमों से उनके पास चली आई और गुस्से से बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज सुनकर अनुपमा जी ने घूमकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज आपको देर हो गई तो हमने सोचा कि आज हम अपने हाथों से अपनी बेटी और नातिन के लिए खाना बनाएं, और आप चिंता मत कीजिए, अब हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर आप यूं ही हमें बैठाए रखेंगी तो जरूर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए अगर आप चाहती हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं तो कुछ काम करने दिया कीजिए हमें भी। उन्होंने उसको मस्का लगाया, जिस पर आरवी उनको पहले तो गुस्से से घूरती रही, फिर सख्त लहजे में ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, पर आप सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बनाएंगी, बाकी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाएंगी। अनुपमा जी ने उसकी बात बड़ी आसानी से मान ली। फिर उन्होंने सामने रखी सब्जी को देखा जो आरवी ने रात को शान के लिए बनाई थी, और बची हुई सब्जी सिज में डाल दी थी। उन्होंने कल रात के खाने को याद करते हुए कहा, बेटा जहाँ तक हमें याद है कल आपने ये सब्जी तो नहीं बनाई थी, फिर ये कब की सब्जी रखी थी फ्रिज में?
आरवी ने सब्जी देखी तो एक बार फिर कल शान के आने से लेकर जाने तक सभी पल उसके जहन में ताजे हो गए। चेहरे पर गुलाबी रंगत उभर आई। उसने अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेटते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ वो कल रात को वो आए थे, खाना कुछ था नहीं और वो भूखे थे, तो मैंने उनके लिए ये सब्जी बनाई थी। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने हैरानी से फिर से सवाल किया, आप कहना चाहती हैं कि कल दामाद जी यहाँ घर पर आए थे? आरवी ने हाँ में सर हिला दिया। अनुपमा जी ने हैरानी से ही आगे सवाल किया, कब आए थे वो, हमें बताया क्यों नहीं, अभी कहाँ हैं, कहीं आपने उन्हें भगा तो नहीं दिया, बताइए हमें कब आए थे वो और अभी कहाँ हैं? कल ऑफिस से लौटते हुए आ गए थे, पर तब आधी रात हो चुकी थी इसलिए आपको नहीं बताया, और मैंने उन्हें नहीं भगाया था, मैंने तो रुकने को कहा था, पर घर पर बड़ी माँ उनके इंतजार में बैठी थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा। आरवी ने सहजता से जवाब दिया जिससे अनुपमा जी की चिंता कुछ कम हो गई। अनुपमा जी ब्रेकफास्ट बनाने लगी तो आरवी बाहर चली आई। टू बी कंटिन्यूड।